राजू भाई जी का एक हाथ से स्वागत करेंगे सभी। आपका परिचय, आप 73 से मधुबन में रहते हैं, दादी जी और मनमोहनी दीदी जी के साथ रहकर अच्छी पालना की। दीदी जी ने आपको मुरली और प्रश्न उत्तर लिखने सिखाए, तब से आप मुरली डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, जो बाबा की अव्यक्त मुरली चलती है और सुबह सुबह हम सबको बाबा की अव्यक्त मुरली मिलती है। तो जो सारी मेहनत श्रेय जो है राजू भाई जी को जाता है, क्योंकि सुबह सुबह हमें ताजा फल बाबा तो देता ही है, लेकिन साकार में भी जो पढ़ने को मिलता है, तो राजू भाई जी पूरी मेहनत करके हमें सुबह साकार में मुरली हमारे हाथ में पहुंचा देते हैं। तो आपको खास दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है, जिस कारण आप देश विदेश में जाकर ब्राह्मण आत्माओं को ईश्वरीय और ज्ञान की पालना करते हैं। साथ साथ आप ग्राम विकास प्रभा के वाइस चेयरमैन हैं, इस प्रभा के सेवा के निमित्त आप भारत विदेश विभिन्न प्रांतों में जाकर ग्रामीण और किसान भाइयों की सेवा करते हैं। ज्ञान सरोवर, पांडव भवन और शांतिवन फोटो स्टेट संभालते हैं। तो अभी हम भाई जी का क्लास सुनेंगे, राजू भाई जी अपना अनुभव सुनाएंगे, है ना, जो भी से, क्योंकि भट्टी से हम क्या लेकर के जाए, कैसे हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, तो उसके पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे भ्राता राजू भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति। पांडव भवन की भट्टी करने का चांस आपको मिल गया, ये भी योग की कमाल ही कहेंगे। जो आप सबने ऐसा योग किया, जो एक दिन में रास्ते खुले और आप आ गए, 3 दिन 4 दिन बहुत अच्छी भट्टी की, अच्छी लगी ना, सबने खूब भरपूर किया अपने आप को। आज तो जाने का दिन, कल जाएंगे। मैंने कहा कि भट्टी तो कल पूरी हो गई, मुझे क्यों बुला रहे हैं बार बार, नहीं जा सकते थे। अच्छा, तो कुंती बहन कहती है आपको आना ही है, ठीक है आते हैं जी। सबने बुला दिया, आ जाओ, अच्छी बात है। बाबा हम सब बच्चों को इतनी पालना दे रहे हैं, ये भी बाबा की पालना है। जो वतन में होते हुए भी इस आकार वतन में स्नेह और शक्ति से हम सबको भरपूर कर रहे हैं, और पांडव भवन तो बाबा की तपस्या स्थली है, चरित्र भूमि है। इस चरित्र भूमि कर्म भूमि में बाबा ने जो तपस्या की, साकार ब्रह्मा बाबा ने, उनके वाइब्रेशन है, और उसके कारण सबको बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। बिना मेहनत के योग लग जाता। तो मुझे जो टॉपिक दिया था कुंती बहन ने, वो कहा था कि व्यर्थ से मुक्त कैसे बने, व्यर्थ से मुक्त समर्थ स्थिति कैसे बने, ये टॉपिक दिया था, याद है। क्लास तो कल था, लेकिन कोई कारण से आशा बहन वगैरह को जाना था, इसलिए उनके क्लास हुए। हम सब बाबा के बच्चे बाबा की मुरलियां सुनते हैं रोज। बाबा हम सबको ज्ञान खजाने से भरपूर करते हैं। आज बाबा ने दो युक्तियां व्यर्थ से मुक्त बनने की बताई है। आज की मुरली किसको याद है? व्यर्थ से मुक्त होने की दो युक्तियां आज की मुरली से बोलो। ये कंट्रोलिंग पावर। दूसरा? अच्छा, तो दोनों बातें याद आ गई ना। बाबा की मुरली में भिन्न भिन्न रीति से व्यर्थ से मुक्त होने की कई विधियां आती हैं, क्योंकि सबसे ब्राह्मणों की बड़ी कंप्लेन यही रहती है, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। एक बार बाबा ने कहा कि ये भी इम्प्योरिटी है, अपवित्रता है, जिसमें हमारा समय शक्तियां नष्ट होती हैं, इसलिए इस व्यर्थ पर कंट्रोल करो। तो व्यर्थ पर कंट्रोल करने के लिए समर्थ संकल्पों का स्टॉक चाहिए, क्योंकि संकल्प तो चलने बिना रहते नहीं है। कहते हैं पूरा कल्प ही ये संकल्प चलते हैं। इसके अंदर आत्मा आ गई शरीर में तो संकल्प के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकती। भले कोई कुछ समय के लिए संकल्पों को दबा दे, निर्संकल्प समाधि में बैठ जाए, लेकिन कितना समय बैठेगा? शून्य स्टेज नहीं होती, कुछ न कुछ संकल्प तो हर हमेशा चलते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे संकल्पों को मोड़ने की शक्ति चाहिए। कौन से संकल्प मेरे काम के हैं, कौन से नहीं हैं, उसका ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। तो ज्ञान से जो आत्माएं भरपूर रहती हैं, जिनका अच्छा चिंतन चलता रहता है, वो व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाते हैं। इसलिए संकल्पों को या कहें मन को खाली नहीं छोड़ना, बिजी रखो, कुछ न कुछ अच्छी प्लानिंग करो। बाबा की मुरलियों को सुनो, मनन करो, चिंतन करो, उस पर कोई न कोई टॉपिक पर लिखो, दूसरे संबंध संपर्क में आते हैं उनको सुना दो, तो मन जो है एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ता जाएगा, अच्छे अच्छे संकल्प उसके अंदर क्रिएट होंगे। और जब अच्छे अच्छे संकल्प चलते हैं तो अगर कोई व्यर्थ आता भी है तो लगता है ये तो मेरे काम का नहीं है, छोड़ देते हैं उसको। इसलिए अधिक मेहनत न करके सिर्फ ज्ञान रत्नों में खेलने का एक सुंदर अवसर संगम पर हम सबको मिला है। मुझे तो ये बहुत अच्छा सेवा का चांस मिला, जो सवेरे से रात तक केवल मुरली से, ज्ञान रत्नों से ही खेलता हूं। बाबा ने जब ये सेवा मुझे दादियों ने दी तो उस समय मुरली केवल 200 या 250 छपती थी हिंदी में। विदेश तो बाद में धीरे धीरे खुला और कुछ समय हमने यहां से इंग्लिश मुरलियां भेजी, लेकिन उसके बाद जब विस्तार हुआ तो इंग्लिश मुरली भी विदेश में ही लंदन में छपने लगी। यहां ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, यहां केवल हिंदी और सिंधी। दादियां थी सिंध की तो उनके लिए कुछ सिंधी में मुरलियां निकलती और बाकी हिंदी में। धीरे धीरे सेवाओं की वृद्धि हुई और मुरलियों की संख्या बढ़ने लगी, और उस समय यहाँ पर कोई भी साइंस के ऐसे साधन नहीं थे। साइक्लोस्टाइल मशीन थी, वो भी हाथ वाली थी, और उसमें हम करीब 2000 पहले शुरू किया 200-250 कापी से, फिर बढ़ते बढ़ते 2000-3000 होती गई, और अभी तो कई हजार छपती हैं, और वो कॉपी प्रिंटर पर छपती हैं। पहले साइक्लोस्टाइल पर एक स्टेंसिल से अच्छी कापियां 1000 के लगभग निकलती थी, और जब बढ़ने लगा काम, मूल्यां बढ़ने लगी, तो हम कम से कम 3-4 बार स्टेंसिल काटते थे एक ही मूल्य की। अकेला ही था मैं टाइपिस्ट, और इसलिए चार बार मुरली को अगर टाइप किया जाए और उसकी करेक्शन की जाए चार बार, तो आठ बार तो पढ़ना ही पड़ता था, और उसके बाद उसमें से प्रश्न उत्तर निकालना, उसका सार निकालना, प्रश्न उत्तर अलग से टाइप करके देना, तो सारा दिन ही ज्ञान रत्नों से खेलने का सौभाग्य मिल गया। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जो मैं आठ घंटा दस घंटा मुरली न पढ़ता हूं। तो ये मुरलियां फिर रिवाइज हुई, रिवाइज के बाद और बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते कई हजारों में कापियां पहुंच गई। फिर धीरे धीरे इसको चेंज किया, और अभी तो कंप्यूटर में एक बार टाइप कर दो, टाइप की हुई है, फिक्स है, सिर्फ प्रिंट करके देना पड़ता है। उसमें वरदान, स्लोगन, क्वेश्चन आंसर, वो एडिशन करके सेट करके मुरली दी जाती है। तो मैंने देखा है जब हम ज्ञान रत्नों में अपने आप को विजी कर देते हैं तो कई व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाते हैं। क्या चल रहा है यज्ञ में, क्या हो रहा है सेंटर्स पर, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, सुनने की देखने की फुर्सत ही नहीं है, इतना बाबा ने बिजी कर दिया। कई बातों से अपने आप मुक्त हो गए। जो दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा ने जब दिया, मैं बाबा के सामने बैठा था, 88 की बात है, तो 88 में मैं बाबा से जब लास्ट में मिला, उस दिन केवल मधुबन वालों से मिलना था, और बाबा शाम को 6:30 बजे आए और सुबह 6:30-7 बजे मेरा नंबर आया, क्योंकि मैं पूरी रात बाबा के साथ साथ हाथ से लिखता था। लिखने की सेवा मेरी थी कि जितना भी बाबा बोलते थे सब हाथ से लिखता था, फिर सुबह टाइप करके दादी को बताता था, आज बाबा ने इतना इसके लिए बोला, इसके लिए बोला, फिर उसके बाद उसकी मुरली बनाते, सेट करते थे। तो जब मैं मिल रहा था तो बाबा ने बहुत प्यार से मुझे दृष्टि देते कहा कि तुमको दिव्य बुद्धि का वरदान मिल गया है। तो मेरा प्रश्न ऐसे अचानक संकल्प आया, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि बाबा से हुई है, और ये वरदान तो सरस्वती का है। सरस्वती को कहते हैं विद्या की देवी, दिव्य बुद्धि दाता है। तो जब मैं सोच रहा था कि ये वरदान मुझे बाबा दे रहे हैं किस लिए, कहां से मुझे वरदान मिला, तो बाबा ने दूसरे सेंटेंस में बोला कि तुमने अपनी बुद्धि को कहीं भी बिजी नहीं किया इधर उधर की बातों में, केवल स्वचिंतन और स्वोन्नति की बातें ही लिखी, पढ़ी और सुनाई, इसलिए बुद्धि को वरदान मिलता गया। तो बाबा से अगर दिव्य बुद्धि का वरदान लेना है तो ये बात ध्यान रखना, केवल स्वचिंतन करना है, पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अगर इस ब्राह्मण जीवन में कोई को अपनी उन्नति करनी है, व्यर्थ से मुक्त रहना है, तो स्वचिंतन करते चलो, स्वाध्याय करो, अपने आप को पढ़ाओ, एकांत में चले जाओ, समय दो अपने को, अपने से बातें करो, बाबा आपने मुझे क्यों चुना है, आपने मुझे अपना बनाया है, किन विशेषताओं को आपने देखा, मुझे अभी क्या करना है। तो बाबा से जब बातें करेंगे तो बाबा की वो शक्तियां आपको साथ देंगी और कई बातों से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। जो बातें मेरे काम की नहीं है उन बातों में मुझे इंटरेस्ट नहीं लेना है, इसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें संसार में हो रही हैं जिनसे कोई हमारा लेना देना नहीं है। मान लो आज आप ट्रेन में बैठ गए हैं, चारों तरफ से लोग इकट्ठे होंगे, कोई कहेगा ये नेता ऐसा है, ये सरकार ऐसी है, वो ऐसी है, ये किया वो किया, यहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ ये हो गया, कोई ने कोई मदद नहीं की, कोई कुछ कर नहीं रहा है, क्या है ये सब, व्यर्थ है, सहज है, समर्थ है, लेना देना कुछ नहीं मेरा, लेकिन टाइम पास कर रहे हैं, एक दूसरे को सुना के कभी किसी का मन खराब कर देते हैं। बाबा हम सबको कहता है ये समय बचाओ, ये बहुत बहुत कीमती संगम का समय है। एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है, इसलिए ये व्यर्थ न जाए इस पर पहरा दो। जहां पर ऐसी चर्चा हो रही है, बाबा ने तो दो दिन पहले मुरली में कहा, अगर कोई व्यर्थ बातें वाहियात बातें सुनाता है तो तुम्हारा दुश्मन है, अंडरलाइन किया ना। बाबा की ये मुरलियां जब चलती हैं तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स हाईलाइट करनी चाहिए कि बाबा हम सबको क्या कहता है, क्या चाहता है। कोई भी व्यर्थ बातें फालतू बातें वाहियात बातें न सुननी है न सुनानी है। कुछ भी हो रहा है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरी जवाबदारी है तो भी अपनी बुद्धि को बहुत शुभ भावना से शुभ चिंतन से भरपूर करके फिर कोई बात को निर्णय लेना है, कहना है। अगर शुभ चिंतक वृत्ति है तो हमारी बातें व्यर्थ नहीं जाएंगी, कहीं ना कहीं उसकी रिजल्ट निकल आएगी। इसलिए बाबा हम सबको कहता है अपनी वृत्तियों को शुभ चिंतन से संपन्न करो, भरपूर करो, ज्ञान चिंतन से भरपूर रखो। कोई बातें आएंगी ज्ञान की ढाल मिल जाएगी और पार कर लेंगे। हर एक ब्राह्मण के 5 फाउंडेशन बहुत पक्के होने चाहिए। कोई भी बिल्डिंग किसी भी बड़े भूकंप से तूफान से हलचल से सेफ कब रहती है? जब उसका फाउंडेशन गहरा और पक्का होता है। अगर मजबूत फाउंडेशन न हो, ऐसे ही कोई बिल्डिंग थोड़ा सा खोद करके खड्डा खड़ी कर दी जाए तो थोड़ा भी अगर 2-4 पॉइंट भी भूकंप का झटका लगा तो वो धराशायी हो जाएगी। कच्चे कच्चे मकान कैसे गिरते हैं आपने देखा होगा, भूकंप के अंदर सारे के गांव के गांव डूब जाते चले जाते हैं, कोई भी बिल्डिंग नहीं बचती। मजबूत से मजबूत बिल्डिंग भी गिर जाती है, लेकिन जिसका बहुत गहरा फाउंडेशन होता है वो खड़ी रहती है। तो बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे इस समय अंतिम समय में माया बहुत तीव्र गति से अंतिम वार अजमाएगी। जब देखती है ना मेरे ग्राहक अभी जा रहे हैं तो भी अपना अस्त्र शस्त्र यूज करती है। इसलिए हम सबको फाउंडेशन बहुत कूट कूट करके पक्का करना है। निश्चय का फाउंडेशन पहला है। स्वयं में भी बहुत निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी हूं, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। रोज जब सवेरे आंख खुलती है ना तो अपने मस्तक पर एक विजय का तिलक चमकता हुआ देखो कि बाबा ने मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा दिया है। कहते हैं ना तुलसीदास चंदन से तिलक दें रघुवीर, लेकिन जब रघुवीर जी भगवान जब उनको तिलक देने के लिए आए तो इतना मगन तेज उनको पता ही नहीं चला, ऐसे कहानी है शास्त्रों में। तो बाबा हम सबको विजय का तिलक देता है अमृत वेले, और निश्चय हो कि मैं ही कल्प कल्प का विजयी हूं। कितने भी कड़े संस्कार क्यों न हो, उन संस्कारों पर मेरी विजय हुई थी और होगी ही, निश्चित है। तो ऐसे निश्चय के फाउंडेशन को पहले मजबूत करो, स्वयं में निश्चय। बाबा हमारा सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है। इस निश्चय के आधार से अगर कोई कमजोरी कोई कमजोर संस्कार स्वभाव होगा भी तो ठीक हो जाएगा। तो निश्चय का फाउंडेशन अच्छी तरह से मजबूत चाहिए। कोई भी बातें हिलाने वाली आए तो बाबा के साथ से उस निश्चय के आधार से विजयी बन करके रहना। व्यर्थ संकल्प चलाने के लिए बातें तो बहुत आती। आजकल की एक बहुत बड़ी माया चल रही है, शायद आप लोग जानते होंगे, इंटरनेट पर कई ऐसी बातें उल्टी सीधी ब्रह्मा कुमारीज के लिए भी लोग लिख रहे हैं। एक तरफ बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, ज्ञान में चलते हैं, खूब अच्छी वृद्धि हो रही है, बहुत अच्छा सेवाओं का विस्तार भी हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कोई न कोई ऐसे जो हमारे ज्ञान में कच्चे पक्के हैं, जिन्होंने अपनी पवित्रता की धारणाओं को मजबूत नहीं बनाया है। कोई ऐसी बात देख करके उल्टा सीधा लिख देते हैं और कई आत्माएं उसको पढ़ करके अपने संकल्प नेगेटिव व्यर्थ चलाना शुरू कर देती, अपने भी चलाती हैं और दूसरों को भी बता करके कि देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, उनको भी व्यर्थ की ओर मोड़ देती हैं। इसलिए बहुत ध्यान देना, किसी भी रॉन्ग साइड पर नहीं जाना है, कुछ भी हो उसको पढ़ना और देखना भी नहीं है। जब हमको सत्य ज्ञान और ज्ञानदाता का निश्चय है तो फिर कोई भी बातें व्यर्थ की सुननी सुनानी नहीं है। उस पर कंट्रोल करो, उसकी कंट्रोलिंग पावर चाहिए। बहुत सारी व्यर्थ बातों से आप मुक्त हो जाएंगे। और साथ साथ इस ड्रामा में कई सीन्स बहुत कल्याणकारी हैं। अकल्याण वाली सीन में भी कई कल्याण समाये हुए हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से पक्का करो, क्योंकि ब्रेक तब लगती है जब ब्रेक में आयल होता है। नहीं तो बाबा ने कहा ना, लगाते यहां है, लगती वहां है। बहुत सा समय व्यर्थ चला जाता, उसके बाद कहते हैं यही ड्रामा में होगा, नथिंग न्यू। बाद में सोचते हैं, पहले सोच लेते बहुत कुछ, बहुत देर के बाद, एक घंटा दो घंटा बीत जाने के बाद वो ब्रेक लगती है, बाद में सोचते हैं हर आत्मा का अपना पार्ट है, बाबा ने तो कहा है एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलेगा, इसमें भी कुछ राज है, कुछ कल्याण है, बुराई में भी कुछ अच्छाई समाई हुई है। ये ज्ञान ड्रामा का बहुत अच्छा मिला है और हर एक दूसरे को सुनाता भी है। जब कोई उसके आगे दूसरे के आगे परीक्षा आएगी ना, पेपर आएगा, तो बड़े प्यार से उसको फोन पर या सन्मुख जा करके कहेगा, अरे भूल जाओ भाई, ये तो ड्रामा था, बहुत कल्याणकारी, कुछ इसमें और राज होगा। उसके व्यर्थ को कंट्रोल करने के लिए उसको मदद करेगा। लेकिन अगर भूल से अपने ऊपर वो पेपर आ गया, चलो हम जानते तो हैं ड्रामा है, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा आएगी ये तो कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता, ये भी कभी विचार नहीं आया था, ये रोना शुरू, अपना और दूसरों का समय बर्बाद, बहुत सारा समय उसके पीछे खत्म हो जाता। लेकिन ड्रामा माना एक सेकंड में संकल्पों को ब्रेक लग जाए, क्योंकि ये ड्रामा बहुत राजयुक्त है, कल्याणकारी है, और इसके हर सीन में कुछ न कुछ छिपा हुआ है राज, पता नहीं चलता। ये हिसाब किताब आया, मान लो आज मेरे आगे शरीर की कोई बीमारी आ गई, अब हमको नहीं पता चलता इसमें क्या राज। मैं आपको बताऊं, 85 में पदयात्राएं निकली, सुना होगा युद्ध की पदयात्राएं 85 में निकली थी, यज्ञ में गांव गांव में खूब सेवाएं हुई उस समय। उसके बाद तो कई प्रकार के अभियान निकाले गए, बहुत सेवाएं हुई। तो जब 85 की पदयात्रा निकल रही थी तो अचानक इसी जुलाई मास में मुझे बुखार हुआ, और बुखार हुआ तो यहां डॉक्टर और कोई बड़े तो थे नहीं, जो डॉक्टर था उसने मुझे ऐसी गोली दी जो मैं गोली खा के बुखार तो उतर गया, लेकिन पूरा शरीर जो है उसकी नसें जाम हो गई, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, न ये हाथ चले न पैर चले, मैं एक सीढ़ी चढ़ूं गिर जाऊं। इस हाथ में अगर मुझे कोई कहे ये फूल है इसको दबा के देखो, तो फूल भी दबा नहीं सकता, ताकत ही नहीं थी, सब नर्वस सिस्टम खराब हो गई। दादी जी को पता चला, दादी जी यहाँ थी, अपना हॉस्पिटल तो कुछ था नहीं, डॉक्टर भी कोई बड़े नहीं थे, तो उन्होंने कहा सरकारी अस्पताल में इसको ले जाओ। तो मुझे भाई लोग अपनी गाड़ी में बिठा के वहां ले गए और डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर तो बहुत मजा किया था थोड़ा, और उसने कहा अरे कुछ नहीं है, मेरा चेहरे पर तो था ही नहीं, मैं बात भी मुस्कुरा के कर रहा था, कुछ नहीं बताया। हमने कहा थोड़ा सा ऐसा लगता है कुछ शरीर कमजोर हुआ है, गिर जाता हूँ, ये तो ऐसे ऐसे उसने थोड़ा बहुत चेक किया, और कहता अरे ये पदयात्रा में जाना नहीं चाहता ना, इसलिए उसने हंसी में उस बात को उड़ा दिया। फिर भाई लोगों ने सोचा नहीं है तो कुछ, तो फिर घुमाते फिराते इधर उधर ले गए, इधर उधर शायद मन में कुछ होगा, कुछ कारण होगा, क्यों शरीर में कुछ स्थान दिखाई नहीं देता था कुछ। तो दादी को इसी फागे की मौसम थी, तो दादी को आया कि यहाँ की ठंडी में इसके लिए ठीक नहीं है, शायद ये मौसम का भी अंतर हो सकता है। तो उस समय संगम भवन था, शांतिवन नहीं था। तो संगम भवन में दादी ने कहा तुम जाओ दो चार दिन वहां रहो, मौसम चेंज होगा गर्म ठंडी का तो शायद ठीक हो जाए। तो मुझे जब वहां भेजा तो वहां पर हम वहां के अस्पताल में गए, तो उस डॉक्टर ने देख करके कहा ये तो बहुत बड़ा इनको पोलियो अटैक है, और उसके कारण उसने रो चार इंजेक्शन पांच इंजेक्शन कंटिन्यू एक दो घंटे के बाद देना शुरू कर दिया, सुला दिया बिस्तर पर, कहा कहीं नहीं जाना अभी यहीं रहना है हॉस्पिटल में। तीन 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 दिन तक उसने मुझे कंट्रोल किया, मना उस जो अटैक था पैरालाइज न हो जाए, इसलिए तीन दिन तक खूब इंजेक्शन देके कंट्रोल कर लिया, उसको पता चल गया। फिर बोलने लगा अभी बड़े हॉस्पिटल में इसको ले जाओ, पालनपुर ले जाओ। मुझे पालनपुर ले गए, 12 दिन वहां रखा, वहां इलाज चलता रहा, कंट्रोल तो कर लिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन शक्ति इतनी जल्दी खत्म हो जाए और फिर बढ़े उसमें टाइम लगता है। तो 12 दिन तक वहां पर रहने के बाद उस डॉक्टर ने कहा कि अभी अहमदाबाद में एक महीना रखो और वहां पर फिजियोथेरापी कराओ, फिजियोथेरापी से शक्ति आ जाएगी, कंट्रोल तो हो गया, बीमारी कंट्रोल में आ गई है, लेकिन इसकी शक्ति के लिए रिटर्न के लिए आपको वहां एक मास तक फिजियोथेरापी करनी पड़ेगी। सेंटर पर आ जाकर के दादी जी को बड़े ख्याल चले, क्योंकि मैं अकेला टाइपिस्ट था मधुबन में, मुरली बंद हो गई लोगों की, और कई चीजें जो मैं कर रहा था वो सब स्टॉप हो गया अचानक। तो दादी ने उसी समय एक भाई को बुलाया, हमको कहा कि आप किसी को बुला के अपनी सेवा दे दो। अब वो सिंधी तो जानता नहीं था, मैं तो सिंधी से मुरलियां टाइप करता था हिंदी में, फिर भी उसके उसको यहाँ बुलाया, एक भाई को रख दिया और बहनों को जो सिंधी बहनें थी उनको बोला थोड़ी मदद करो इनको, उसने टाइप शुरू किया। मैं एक मास अहमदाबाद में रहा, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, डॉक्टर एक बार मुझे दोबारा डॉक्टर के पास ले गए तो देख करके उसने क्या किया, मुझे ऐसी गोली दी जो मैं सदा सोया रह जाऊं। जब वो गोली मुझे दी और मैं एक दिन खाई तो मेरा जो हाल था वो बेहाल हो गया। तो एक डॉक्टर आया था अपना बीके, तो उसको जब दिखाया कि ये गोली मैंने खाई तो कहते ये तुमको क्यों दी, तो पता नहीं, मैं तो ऐसे ही लोग कह रहे थे दिखा के आ जाओ, मैं गया था। कहता ये तो उनको दी जाती है जिनके बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बहुत संकल्प चलते हैं, इसलिए ये गोली दे करके उसके संकल्पों को शांत किया जाता है, आपको ऐसे संकल्प तो चल नहीं रहे थे, कुछ न कुछ संकल्प नहीं था। उसने सोचा डॉक्टर ने ये बार बार बीमारी का संकल्प इसको आ रहा है इसलिए मेरे पास दोबारा आया है, इसलिए उसने ऐसी दवाई दी जो ब्रेन शांत हो जाए। बोला इसको दवाई को अभी फेंक दो, हमारे डॉक्टर ने अपने डॉक्टर ने कहा इसको बिल्कुल एक गोली भी नहीं खाना, आपको ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो साइड इफेक्ट होते ना उनको दी जाती है। मैंने वो गोली फेंक दिया। दादी ने कहा तुम फिजियोथेरापी तो करो लेकिन ज्ञान बहुत है बुद्धि के अंदर, और बहुत सारे अहमदाबाद में सेंटर हैं, रोज सवेरे सवेरे आपको गाड़ी आएगी, गाड़ी में जाओ क्लास कराओ, बैठना नहीं खाली। मैं ये कह रहा हूं कि अपने मन को बिजी करना होता है, ऐसे परीक्षाएं आती हैं, ऐसी परीक्षाओं में मन को फ्री नहीं रखना, फ्री रखोगे तो सोचते सोचते और बीमार पड़ जाओगे, मेरे को ये हो गया मेरे को ये हो गया, अब मुझे मैं कोई काम का ही नहीं रहा। तो वो संकल्पों को मोड़ने के लिए दादी जी ने यहां से डायरेक्शन दिया कि हर सेंटर पर सुबह शाम तुमको क्लास कराना है। अब क्लास कराना है तो उसके लिए चिंतन करना पड़ेगा, उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। अब बीमारी के अध्ययन से हम बीमारी की जो सोच थी क्लास कराने के कारण मेरी वो सोच परिवर्तन हो गई कि मैं बीमार हूं। अब सुबह शाम जाने लगा, इतना बहनों का प्यार, भाई बहनों का स्नेह मिला, क्लास में और चिंतन चले और अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलने लगी, तो एकदम विचार चेंज हुए। और चेंज होने के साथ साथ एक संदेशी बैठी थी, मैंने कहा तुम बाबा से पूछो मुझे भी क्या करना है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा तुम टाइप नहीं कर सकते हो कभी जिंदगी में, और मेरा एक हॉबी कहें शौक कहें टाइप का, मैं तो मुरली ही टाइप करता सारा दिन, वो कहता टाइप ही नहीं कर सकते हो, तो मुझे थोड़ा सा वो संकल्प चल रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, ये सेवा मेरे से कैसे छूटेगी। तो बाबा के पास मैंने उस संदेशी को बोला जो सेंटर पर रहता था, उसको बोला तुम पूछो बाबा से क्या कह रहा है ये डॉक्टर, ये क्यों कह रहा है। तो बाबा ने बड़ी रमणीकता से जवाब दिया, बच्चे को बोलो कुछ नहीं हुआ उसको, वो थोड़ा हिसाब किताब आया ठीक हो जाएगा, उसको कहो कि सुबह सुबह जाके भंडारे में आटा गूंदे, आटा जो है ना ऐसे ऐसे गूंदने से ना ये ताकत आ जाती हाथों में। मैं 5-7 दिन 10 दिन इसको आटा जाके भंडारे में खड़ा हो जाता था, आटा लेकर के गूंदता था, ऐसे ऐसे हाथों में ताकत आ गई। शरीर के लिए पैर के लिए एक्सरसाइज वगैरह बताई थी वो सब करता रहा। फिर दादी जी को यहां बड़े संकल्प चले, दादी जी ने सोचा कि ये बीमार पड़ गया, ये सारा कारोबार ऐसा रुक रहा है। दादी जी यहां से सीधा मधुबन से वहां आई और बहनें उनका स्वागत करने के लिए सब इकट्ठी हो गई कि दादी आई दादी आई। दादी ने किसी को भी नहीं देखा, केवल मेरे लिए आई और आकर के मुझे उठाया, कहते खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हुआ और खड़े होकर के बहुत प्यार से ऐसे बाकी में ले लिया और बहुत देर तक हिलाती रही जैसे अपनी सब शक्तियां ट्रांसफर की, और मैं जो कमजोर था वो एकदम ठीक हो गया। दूसरे तीसरे दिन कहती आ जाओ मधुबन में, छोड़ो सब डॉक्टर डॉक्टर का चक्कर। वो मैं आया, मैंने कहा मैं पहले टाइप करूंगा। जब मैं टाइप पर बैठा, जो मैं 10 मिनट में स्टेंसिल काटता था उस दिन मैंने 8 मिनट में काटा, स्पीड किया बढ़ाई और फिर से वही सेवा शुरू कर दी। साथी भी मिला, क्लास करने की प्रैक्टिस हुई, फिर से वो रोग धीरे धीरे खत्म हुआ और जो सेवाएं थी वो सब बाबा ने सौंप दी, फिर से आ गई। और जो भाई क्रमानुसार मुझे सेवा में मिला, मदद की, अचानक कुछ कारण बना, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसने शरीर छोड़ दिया, फिर से साइड डिपार्टमेंट आ गई हाथ में। 4 साल के अंदर 85 में सब हो रहा है, 90 में उसने शरीर छोड़ा, फिर से जैसाई डिपार्टमेंट मिली। फिर दादी ने कहा नहीं अभी तुम साथी बनाओ और एक दो रखो। फिर 2 साथी मिले और उनको डायरेक्ट ड्रामा में, उनको जैसे कोई ने प्रेरित करके मेरे पास भेजा कि मुझे आपके साथ रहना, सीख गए सब। कई ऐसी परीक्षाएं आती हैं, उन परीक्षाओं में बहुत स्थिर माइंड चाहिए, नहीं तो ब्रेक नहीं लगती। ये तो शरीर की आई, कोई के आगे धन की आती है। अब बाबा के आगे जो धन की परीक्षा आई ना, शायद ही अगर किसी के परिवार में आ जाए तो ज्ञान ध्यान छोड़ के भाग जाएगा, कहेगा हमने इतना सब किया और मेरे आगे ये परीक्षा आ गई, मैंने सब कुछ सफल कर लिया। ब्रह्मा बाबा ने जितना कमाई की सोना चांदी हीरे जवाहरात का बिजनेस करके, वो 14 साल तक बच्चों को प्यार से खिलाया, खूब खिलाया, और कहते थे ओम मंडली में तो पिस्ता बादाम खाते हैं, लेकिन जब ओम मंडली को ट्रांसफर करके आबू आए तो यही साउथ सीजन मई में आए, जून जुलाई से सीजन शुरू हुई और इतनी अधिक ठंडी जो सब बच्चे बीमार पड़ गए, बीमार पड़े, ठंडी का कोई कपड़ा नहीं, कोई दवाई नहीं, और जो पैसे थे सब खत्म हो गए, स्टीमर में ट्रेन में इतने लोगों को लाना, इतना सामान लेके आना, कुछ नहीं, कोई का सहयोग नहीं, एक का भी। और जिन्होंने निमंत्रण दिया था कि हम मदद करेंगे आप आ जाओ, उन्होंने सब हमें मजाक करना शुरू किया कि अब देखें संस्था कैसे चलती है, अब ये कैसे चलाएंगे। और बाबा बेफिक्र बादशाह, क्यों, उसको निश्चय था इन बच्चों ने मेरे को थोड़ी जीवन दी, ये बाबा जो परीक्षा ले रहा है इसके पीछे कुछ है राज, कुछ कल्याण समाया हुआ है। और वो कल्याण क्या था, अगर वो पेपर नहीं आता ना तो ये बहनें सेवा पर नहीं जाती, सेंटर नहीं खुलते। बाबा कहता था अरे बच्चे मैंने तुमको ज्ञान रतन दिए हैं, इतना धन दिया है, धन बांटो, धन दिए धन ना कुटे, ज्ञान धन दान करो, गुणों का धन दान करो, शक्तियों का धन दान करो, वो धन देखो पीछे पीछे आ जाएगा। 1-2 साल का पेपर लिया जो कच्चे थे वो तो भाग गए, वो तो चले गए दुनिया के अंदर, लेकिन जो बहुत पक्के थे, जिनका फाउंडेशन मजबूत था कि भगवान को हम समर्पित हैं, दादा को नहीं, भगवान को समर्पित हैं, इसलिए हम जो कहेगा मरेंगे जिएंगे लेकिन तेरे दर से नहीं हटेंगे, वो तो पक्के थे बाबा जो खिलाए, एक दिन भी भूखा नहीं सुलाया। सिर्फ नाश्ते के समय कहता था चलो पहाड़ पर करौंदा चेरी जो भी जंगल में जामुन थे खा के आ जाओ। दोपहर को कहीं भी से पैसा आता था और भोजन बनता था दोपहर का, एक दिन भी दोपहर का भोजन नहीं बनाओ ऐसा नहीं। लेकिन पेपर ऐसा कड़ा था जो कुछ कल क्या खाएंगे कुछ पता नहीं। और एक दिन जब होली का त्योहार था, बाबा शाम को मुरली चलाता, अरे बच्चे कल होली है ना, कल जलेबी का भोग लगेगा। भंडारी दौड़ के आई, बाबा ये क्या कहते हो जलेबी का भोग, नया चीनी है ना, तेल है ना, घी है ना, मैदा है ना, कुछ भी है, जलेबी का भोग कैसे लगेगा। अरे बच्ची मैंने थोड़ी कहा, उसने कहा है। कितना निश्चय होगा आप समझ सकते हो, कितना निश्चय होगा कि उसने कहा है तो अपने आप खिलाएगा। बच्ची चिंता क्यों करती, वो बैठा है ना खिलाने वाला, सांवल सा है, हुंडी भरी है सबकी, उसने कहा है। अच्छा ठीक है, हम लोग क्या करेंगे आज 2 बजे उठ के योग करेंगे। 2 बजे सबको उठा दिया, इसी भरतपुर राजा की कोठी जो है ना, ब्रज कोठी जिसको कहते हैं, शायद आप लोगों ने देखी नहीं होगी, यहाँ पेट्रोल पंप के पास में शमशान घाट की तरफ जब जाते हैं तो वहां पर कोठी है एक भरतपुर राजा की, उसको ब्रज कोठी नाम दिया, उसी में रहते थे। और नीचे सामने ही एक सिंधी परिवार रहता था, बहुत एंटी भाई, बहुत एंटी, गाली देता था बाबा को कि क्या कुमारियों को लेके घूमता है, खाने पीने के लिए नहीं है, सब भूखे मर रहे हैं, वो बहुत विरोध करता था। और उसकी युगल थोड़ी भावना वाली थी, छिप छिप के जाती थी, कुछ न कुछ बाबा के घर में दे आती थी। तो 2 बजे बाबा ने सबको योग में बिठा दिया, जब 2 बजे लाइट जली, लाल लाइट हुई, तो उस सिंधी की नींद फिट गई। और नींद फिटी तो अपने युगल को उठा के कहता है, देख दादा ने आज क्या किया है, होली के दिन भी बच्चों को सोने नहीं देता है, 2 बजे उठा दिया, और मुझे बार बार कुछ कह रहा है कि बच्चे तेरे पास जितना रखा सब ले आ। कहता अब भी जा करके दे आ जा, कहती सवेरे दे दूंगी ना, नहीं नहीं मेरी बुद्धि बदल जाएगी। जो रखा था उसने सब बांध करके उसको दिया और रात को ही 2 बजे उसके पास भेज दे बाबा के पास। सब माताएं बहने हमारी देख करके कहती तुम इतने रात को क्यों आई, कहती अरे मेरे पति की नींद फिट गई, वो तो शांति से नहीं सोता है, कहता अभी दे आओ अभी दे आओ, ये ले आई हूं कुछ दे के चली गई चुपचाप। देखा सवेरे तेल भी आ गया, घी भी आ गया, जलेबी बनी, भोग लगा, सबको बाबा ने खिला दिया। अगर व्यर्थ संकल्प चलाने होते तो कितने व्यर्थ संकल्प चल सकते थे, किसे प्यार से खाते थे, रहते थे, घर हैं, सबकी बिजनेस हैं, सब पैसे वाले लोग हैं, और हम कहाँ पड़े हुए हैं। चाहे आर्थिक पेपर आया, चाहे शारीरिक पेपर आया, चाहे समाज से पेपर आया, चाहे प्रकृति से पेपर आया, चाहे सरकार से भी बहुत पेपर आए, एक नहीं आया। जिस कोठी में रहते थे फिर कोटा हाउस में आया, बोला राजस्थान गवर्नमेंट का नोटिस आ गया, कोटा हाउस खाली करो, सर्किट हाउस बनेगा। कोटा हाउस खाली करो, सर्किट हाउस बने, कहाँ जाएंगे 400 लोग, 350 लोग जाएंगे कहाँ। आखिर यहाँ पहले पहले राष्ट्रपति के पास बाबा ने बच्चों को भेजा, जाओ उसको समझाओ। ये जो स्थान है ना, यहाँ पर पोखरण राजा की कोठी थी, वहां बाबा रहते थे बच्चों को लेकर के। इस राजा को क्या संकल्प आया, उसका यहाँ पर घुड़साल था, घोड़े बांधता था पुराना वाला मकान में, 3.5-4 एकड़ जमीन पांडव भवन की। उसने ऐसे बुलाया और कहा ये लिखा लो, ये मेरे से जमीन आप ले लो। कुछ शराब का नशा था उसको, कुछ था, और उसने बहुत सस्ते पैसे में पांडव भवन की जमीन दे दी। जब ये लिखा पड़ी हो गई, जमीन मिल गई, ले लिया और शिफ्ट होने लगे यहां पर, तब उसको होश आया कि मैंने इतने सस्ते में इनको कैसे दे दी। होश आया तो विरोध करने लगा, झगड़े करने लगा। जब झगड़े करने लगा ना, तो एक यहाँ पर सिंधी पंजाबी थे, नेवंत सिंह दादा, बहुत धाकड़ आबू के, उनको पता चला, वो कहते हैं देखें क्या करते हैं, कुछ नहीं कर सकते, मैं आता हूँ। वो पूरी रात यहाँ बंदूक लेके पहरा देता था, इतना बहुत, जैसे बाबा ने उसको रक्षक के रूप में रख दिया। अब वो डर गए सारे के सारे, कुछ नहीं कर पाए। ऊपर वाला बाबा कैसे सब कुछ कराता है, कैसे कराता है वो जानता है, लेकिन निश्चय की परीक्षाएं तो जरूर होती है। आज वो यज्ञ क्या था और क्या बना है वो आप सब आंखों से देख रहे हो, लेकिन उस परीक्षा में अगर हिल जाते तो क्या होता है, संकल्प से सारी संस्था टूट जाती, कमजोर संकल्प से। बाबा ने खुद नहीं अपने पास आने दिया और किसी भी बच्चे को संकल्प कमजोर करने के लिए छुट्टी नहीं दी। बहुत पॉजिटिव संकल्प, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, अरे बच्चे लिख दो अखबारों में, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ब्रह्मा कुमारीज, खाने के लाले पड़े हैं और लिख रहे हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। आप सोच सकते हो बाबा का नशा क्या होगा, निश्चय क्या होगा, कितना अटूट अटल विश्वास बाबा के ऊपर, भगवान को नई दुनिया बनानी है। और उस नई दुनिया बनाने के लिए सब हिलोरे झगड़े आएंगे, सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो आप सब सच की नैया में बैठे हो ना, कितनी भी बातें आए, कितने भी लोग कहें, विघ्न डालें, लेकिन हिलना नहीं, ये नैया आपको पार ले जाने वाली है। तो पांच फाउंडेशन, एक निश्चय का, दूसरा सत्यता का, हम सच की नैया में बैठे हैं, सच्चाई की नैया को कोई हिला नहीं सकता है, भले कितना भी हिलाए लेकिन डूबो नहीं सकता है। मैं आत्मा अपने स्वरूप को पहचान गई हूं, सत्य हूं, बाबा हमारा सत्य है उसको मैंने पहचाना है, ड्रामा सत्य है, कल्याणकारी है, निश्चित है उसको हमने पहचाना है। इसलिए सत्यता के अथॉरिटी बनकर के रहो, लेकिन सत्यता में सभ्यता नहीं छूटनी चाहिए। कई सच्चे होते हैं ना तो दूसरों को पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, मैं सच्चा हूं ना इसलिए सहन नहीं कर सकता, बाबा कहता उसको सत्यता कहते ही नहीं है। सत्यता के सूर्य को कोई भी बादल छिपा नहीं सकते, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में सिद्ध होती है। अगर मैं सच्चा हूं, मुझे सत्य ज्ञान मिला है, मैं अपने आप को पहचाना हूं, बाबा को पहचाना है, सत्य जीवन को पहचाना है, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, कुछ भी बोले, फलानी बहन ऐसे करती वो ऐसे करती, यहां ऐसा होता वहां ऐसा होता, संस्था ऐसी है वैसी है, कुछ भी बोले, लेकिन सत्यता का फाउंडेशन अगर मजबूत है तो कुछ नहीं कोई कर सकता है। और साथ साथ अनुभव का फाउंडेशन मजबूत करो, ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं है, सुन लिया सुना दिया, अथॉरिटी बनो, ज्ञान स्वरूप स्थिति बन जाए, याद स्वरूप स्थिति बन जाए, धारणा स्वरूप स्थिति हो, सेवाधारियों का हम स्वरूप बन के रहें, सेवा कर रहे हैं, मैं इधर गए उधर गए, सेंटर खोले और फिर एकदम तू तू मैं, ये तेरा सेंटर ये मेरा सेंटर, ये तेरी एरिया ये मेरी एरिया, ये क्या कर रहे हैं, क्यों इस चक्करों में गए हैं। ध्यान रखो बाबा की सेवा है, बेहद का बाबा है, सेवा माना सुख देना है सुख लेना है, जहां टकराव की स्थिति हो वहां चुप किनारा कर लो, मनसा सेवा करो, शुभ भावना की सेवा करो, न कुछ लेके आए थे न कुछ लेके जाएंगे। अनुभव की अथॉरिटी बन करके, अनुभवी मूर्त बन करके, मैं आत्मा हूं ये अनुभव है, मेरा बाबा ये अनुभव है, सूक्ष्म वतन मूल वतन पूरे कर्मों का सबका अनुभव बाबा ने कराया। अनुभव की अथॉरिटी अगर है तो कोई हिला नहीं सकता, फाउंडेशन है अनुभव। और चौथा है हमारी प्योरिटी, मन वचन कर्म संकल्प श्वास, ये प्रतिज्ञा संगम पर हम ब्राह्मणों ने की है, कुछ भी हो जाए हमारी प्योरिटी को कोई भी परिस्थिति खंडित नहीं कर सकती। इस पर तक अगर कोई अटल है, माया कोई भी व्यक्ति मुझे हिला नहीं सकता। इस फाउंडेशन में जो कच्चे वो भाग जाते हैं, वो नहीं चल सकते, टिक नहीं सकते, भगवान का दर सत्यता की दरबार में अपवित्र आत्माएं ठहर नहीं सकती, कितना भी छिपा करके वो गलत काम करें लेकिन वो छिप नहीं सकते। इसलिए बाबा कहता है कि आप पवित्र और योगी बन करके, बाबा के बच्चे बन करके, ज्ञान का अच्छा फाउंडेशन मजबूत करो, ज्ञान को अच्छी तरह से समझो, ज्ञान कितना ऊंचा ज्ञान सागर बाबा ने दिया है, ज्ञान का अर्थ है समझ। कोई भी कार्य करना है बहुत सोच समझ के करना है, कुछ भी बोलना है कहते हैं पहले तौलो फिर बोलो, एक बहुत अच्छा स्लोगन आपके ट्रक के आगे लिखा होता है, सोचने के पहले सोच लो साथ में क्या जाएगा। मैं कहता इनको किसने बुद्धि दी होगी, ये सोचने के पहले सोचो। बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई व्यक्ति जो सोच रहा है उसके पहले भी सोच ले कि ये जो मैं संकल्प कर रहा हूं उसकी रिजल्ट क्या होगी, क्योंकि कर्म का प्रभाव तो पड़ता ही है, कर्म से विकर्म बनता है, पाप कर्म बनता है, गहरी रेखा बन जाती है, लेकिन संकल्प से वायुमंडल बन जाता है। अगर हम संकल्प भी नेगेटिव करते रहते हैं तो उसका प्रभाव आजकल बहुत ज्यादा पड़ रहा है। आज हम जो योगिक खेती शुरू कराई है ये केवल संकल्प की सिद्धि है, संकल्प का प्रभाव है। आप किसी भी पेड़ के आगे 10 मिनट खड़े होकर के उसको प्यार करो, उसको अच्छे अच्छे संकल्प दो। हमने प्रैक्टिकल प्रयोग कराए हैं कि अगर कोई 10 मिनट 5 मिनट भी पौधे के आगे खड़े होकर उसको बहुत स्नेह देता है, प्यार देता है, उसको संकल्प देता है तेरे अंदर इतना बड़ा फल आना चाहिए और इतने फल इसमें लगने चाहिए, उस संकल्प से पौधा देता है। योग है हमारा, योग की सिद्धि है। संकल्प बहुत चमत्कार कर सकती है, इसलिए संकल्प कोई साधारण चीज नहीं सोचते रहते हैं, जो आया सोच रहे हैं, जितना आया सोच रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में हो। फुल स्टॉप लगाओ, नेचर को इजी बनाओ। ज्यादा टाइट नेचर होगी तो संकल्प इधर से उधर मुड़ जाएंगे। टाइट नेचर होती है अभिमान वालों की, जिनमें थोड़ा सा भी अपना अभिमान होता है ना, बुद्धि का, समझ का, पढ़ाई का, जातिवाद का, पोस्ट का, पोजीशन का, किसी में थोड़ा सा अभिमान होगा वो अपने आप को मोड़ नहीं कर सकता, वो अपमान सहन नहीं कर सकता। कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ हो जाएगा, उसके मुताबिक नहीं होगा, उसी समय वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके संकल्पों की क्यों लग जाएगी। इसलिए आज बाबा ने स्लोगन दिया, अपने नेचर को इजी बना लो, सरल बना लो, हर परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड कर लो। कहीं सहन करना पड़ेगा, कहीं समाना पड़ेगा, कहीं सामना करना पड़ेगा। कोई शक्ति जहां जरूरत है वहां यूज हो, उसको कहते हैं बहुत सरल है। सरल चीज को सहज मोड़ा जा सकता है, सहज मुड़ जाएगी तो कहीं भी एडजस्ट की जा सकती है। हम सब ब्राह्मण आत्माएं हर परिस्थिति में अपने को एडजस्ट करना सीख जाएं, व्यर्थ संकल्प चलेंगे ही नहीं। एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, मैं इसके साथ कैसे चलूंगी, इसके साथ नहीं रह सकती, ऐसी है ऐसी है, वो सोच सोच करके अपने आप को भारी कर लेते, सारा दिन व्यर्थ संकल्प चलाते, अपने लिए भी चलाएंगे, उसके लिए भी चलाएंगे, अपनी तकदीर के लिए भी चलाएंगे, भाग्य की भी दोष देंगे और भाग्य विधाता को भी दोष दे देंगे। ये व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है। और सरल नेचर वाले समझते हैं जो है बहुत अच्छा है, ठीक है, जितना मेरा भाग्य है उतना बहुत बड़ा है, मैं किसी के भाग्य से क्यों भेंट करूं। वो सरल नेचर वाले अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये ज्ञान है, समझ है, और समझ के आधार से हमको व्यर्थ से मुक्त होना है। समर्थ स्थिति तभी बनेगी जब इन सब व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा देंगे। जब सब कुछ अच्छे से अच्छा हो रहा है, दुनिया में आग लगेगी तो भी अच्छा ही है, इतना बाबा समझ दे रहा है कि बच्चे जो विनाश होने वाला बड़ा भयंकर होगा, सारी दुनिया हाहाकार करेगी, तोबा तोबा करेगी, और उसमें भी आप बच्चे घुंघरू पहन के डांस करोगे। कौन करेंगे, जिनको निश्चय होगा कि कलयुग के विनाश के लिए हो रहा है, हमारा तो सतयुग आ रहा है, स्वर्ग आने वाला, उसकी स्थापना हम कर रहे हैं, उसके लिए हमने तैयारी की है, उसके लिए हमने दैवी गुण धारण किए हैं, इतने समय से तपस्या की है, हमारा भारत स्वर्ग बन रहा है, ये नर्क को जाने के लिए सब कुछ हो रहा है, वो निश्चय है, उसके आधार से वो हाय हाय नहीं करता है। जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छे से अच्छा हो रहा है, फुल स्टॉप लगा लेता है। कभी नहीं सोचो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इतनी महंगाई हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये विनाश के लिए हो रहा है। कलयुग जाएगा तब तो सत्ययुग आएगा, कलयुग जब तक अति नहीं होगी तब तक अंत कैसे होगा। तो हर चीज में अति होगी, इसलिए विकारों की अति है, माया की अति है, प्रकृति की अति है, और अति के अंदर अपने बच्चे बाबा के हर्षित है, बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ। जब ये सोचोगे सब बहुत अच्छा हो रहा है, तब संकल्प आपके शांत, बहुत प्रिय, सुखदायी हो जाएंगे। नहीं तो संकल्प हलचल करेंगे, ये हुआ वो हुआ, फिर किसी को सुनाने लगे तो कई घंटे व्यतीत कर देंगे व्यर्थ में, उसका भी सिर भारी कर देंगे, जिसको पता नहीं होगा उसको सुना करके। इसलिए कभी भी ऐसी बात नहीं करो, कहो ड्रामा कल्याणकारी, मेरा बाबा कल्याणकारी, संगम का समय कल्याणकारी, इसमें कोई भी गलत कार्य हो ही नहीं सकता। और गलत हो रहा है इसका मतलब है इसके बाद सूर्य आने वाला है, सत्ययुग आने वाला है। इसलिए गलती को गलत रूप में देख करके अपने को भारी नहीं करना, अपने व्यर्थ संकल्प नहीं चला। हर सेकंड लगे बाबा आप बैठे हो, जो हो रहा है सब कल्याणकारी है, फुल स्टॉप। तो संकल्प को अगर फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास होगा ना, तो सेकंड में इस देह से डिटैच हो सकोगे, अशरीरी बन सकोगे, और अशरीरी होते ही बाबा सब शक्तियां भर देगा। जब बाबा से कोई शक्ति की जरूरत हो, कमी महसूस हो, इस देह से न्यारे हो जाओ, इस वस्त्र को उतार दो, इस चोले से अलग होकर भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ, बस कुछ संकल्प करो नहीं। यहां बैठोगे और बाबा की वो शक्तियां किरणें आने लगेंगी, अनुभव होगा कि बाबा हमें सब शक्तियों से समर्थ बना रहा है। लेकिन शरीरी बनने का अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है, ये अंतिम समय में यही अभ्यास हमको पास विद आनर बना देगा। इसलिए भट्टी की है, इसके बाद यहां से जाने के बाद इस अभ्यास को छोड़ना नहीं। जब बिस्तर पर जाओ शरीर को छोड़ो, अपने भ्रकुटी आसन पर आके बैठ जाओ और ऐसे अनुभव करो कि मैं मन के विमान से बाबा के पास जा रही हूं, बाबा मुझे बुला रहा है। मन बुद्धि से बाबा के पास इमर्ज हो गए, शरीर को भूल गए। प्रवेश करो सवेरे जब उठो तो ऐसे लगे मैं परम धाम से इस शरीर में प्रवेश हुई हूं, आज नए अच्छे से अच्छा पाठ बजाने के लिए मैं अवतरित हुई अवतार हूं। रोज शरीर छोड़ना और रोज शरीर लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लो, ये शरीर छोड़ने में कभी दुख नहीं होगा। कोई भी अंतिम समय आएगा तो ऐसे लगेगा जैसे मैं वस्त्र उतार रहा हूं, ये वस्त्र है मैं अलग हूं। लेकिन प्रैक्टिस इसके लिए बहुत चाहिए शरीरी बनने की, तो जब समय मिले सुबह शाम इसकी प्रैक्टिस बढ़ाओ। यहां से जाने के बाद हर एक लक्ष्य रखना, कम से कम मुझे 4 घंटा तपस्या जरूर करनी। भट्टी कर लिया पूरी हो गई नहीं, 4 घंटे को बनाने के लिए सेटअप ऐसे करो, सुबह 4 से 8 के बीच का समय है और शाम को 6 से 10 का। शरीर के लिए जो समय देना है, नहाना है, धोना है, एक्सरसाइज करनी, वो दो, लेकिन 2 घंटा कम से कम सवेरे का अच्छा योग हो और 6 से 10 के बीच में 2 घंटा अच्छा हो। बीच बीच में जो मार्जिन है 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट शरीर बनने की ड्रिल करो। आपका पूरा ही जीवन जो बहुत सारा उलझन में उलझा हुआ है वो निकल आएगा, व्यर्थ बातों से अपने आप मुक्त हो जाएं। इधर की लगन लग गई तो उधर की सब बातें अपने आप बदल जाएं। लेकिन 4 घंटा कम से कम ये लक्ष्य रख करके तपस्या करो, आप देखेंगे आपका जीवन अपने आप दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। खुद की व्यर्थ भी समाप्त और जो आपको देखेगा उसका भी व्यर्थ समाप्त। तो ऐसी तपस्या का संकल्प करके खूब परिवर्तन करके अपने आप को दृढ़ता के साथ बाबा के घर से जाओ और अच्छी तरह से इसका परिणाम मिले। रेगुलर है, पंचुअल है, योगी जीवन है, केवल योग लगा नहीं रहे हैं लेकिन जीवन ही इनकी योगी बन गई है। ठीक है, तो ऐसा बन करके उदाहरण प्रस्तुत करना, ऐसी हमारी भावना है। ओम शांति।
ओम शांति। भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें कैसे व्यर्थ से मुक्त समर्थ स्थिति बना सकते हैं उसके लिए कई सारे पॉइंट्स मिली। क्योंकि अभी तो हम तपस्या भूमि में हैं, तो किसी भी प्रकार का व्यर्थ नहीं चल रहा है। लेकिन अभी हम सब कहाँ जा रहे हैं, अपने अपने कर्म क्षेत्र पर जाएंगे, कार्य व्यवहार में जाएंगे, तो क्या शुरू हो जाएंगे कई सारी परिस्थितियां, कई बातें शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम उन सब बातों पर विजय कैसे प्राप्त करें, इसके लिए जो हमें क्लासेस मिली, जो बड़े भाइयों से दीदियों से जो हमें इतने अच्छे अच्छे अनुभव मिले कि कैसे यज्ञ में परिस्थितियां आई, कैसे बातें आई, लेकिन उनका निश्चय इतना अटल रहा, जो आज भी यज्ञ के फाउंडर बन गए और सारे विश्व की आत्माएं जो आज हमारी दादियां हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जो उनके दर्शन के लिए कहते बस उनकी दृष्टि पड़ जाए, उनको एक बार हम देख ले, वो सिर्फ निश्चय। इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन हमें अपना निश्चय को मजबूत बना के रखना है। और उसके लिए भाई साहब ने बोला कि जितना हो सके हमें अपनी स्थिति देही अभिमानी अशरीरीपन का अभ्यास बीच बीच में हमें करना है। तो जो हमने तपस्या हम 3 दिन हमने किया, तो हम अपने कर्म क्षेत्र पर भी तपस्या कंटिन्यूसली रखें। ये हम सबकी विशुद्ध भावना यही है। और भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। ओम शांति। किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो, कोई क्वेश्चन करना हो तो पूछ सकते हैं, फ्री अभी टाइम है।
ऐसा है कि कई कर्म इंद्रियों से पास्ट में हुए हैं ब्राह्मण जीवन के पहले, अगर ऐसे कर्मों का कोई संकल्प बार बार आत्मा को नीचे उतारता है तो बाबा हमको इसकी विधि बताते हैं, दिल से महसूस करो ये मेरी गलती है, और महसूस करके बाबा के कमरे में बैठ करके सच्चे दिल से उसको लिखो कागज पर, और लिख करके बाबा के आगे ऐसे अर्पित करो कि बाबा फिर से दोबारा इस बात को मैं सोचूंगा भी नहीं, आप मुझे इतनी शक्ति दो जो मैं इससे मुक्त हो जाऊं। तो पास्ट को बिंदी लगाने में ही कल्याण है, इसलिए जो कुछ पास्ट में हुआ है एक कागज पर उतार डालो, और उतार करके बाबा के सामने बैठ करके प्रतिज्ञा करो कि कुछ भी हो वो पास्ट संस्कार अब पुनः रिपीट नहीं होंगे, बाबा आपकी शक्ति मेरे साथ है। तो ऐसे संकल्प करेंगे तो समाप्त हो जाएगा, बाबा के कमरे में बैठ के सच्चाई से लिख के माफी ले लो। और कुछ पूछना है किसी? इसका इतिहास लंबा है। ऐसा है कि 14 वर्ष तक बाहर सेवाएं नहीं थी। जब कराची हैदराबाद में बाबा रहे तो उस समय कोई प्रिंटिंग नहीं थी, प्रिंट नहीं हुआ, और डायरियों में बहनों ने लिखा, कुछ नोट्स लिए। तो जब कराची से भारत आने लगे तो वहां की सरकार ने कहा कि आप अपना सब सामान ले जा सकते हो, कोई भी सामान यहाँ छोड़ना नहीं। तो आप समझ सकते हो 350-400 भाई बहनों का सामान, उनका बिस्तरा, खाने पीने का सामान, अलमारियां, मोटर गाड़ियां, सारा सामान घर का कितना होगा 400 का। तो सब जब तौला गया तो स्टीमर में जितना लोड लेना चाहिए उसे कुछ ज्यादा था, और सबसे ज्यादा वजन था डायरियों का। तो बाबा ने बड़ी युक्ति रची कि बच्चे ये सब डायरियां इकट्ठी करो, और एक जमीन में बड़ा खड्डा खुदवाया और वहां लोहे का टैंक मंगा के रखा, और कहा सब इसमें डायरियां रखो और इसको हम सब मिलके दबा दें, और जब द्वापर में भूकंप आएगा तो इन्हीं किताबों के आधार से शास्त्र बनेंगे। तो ऐसे युक्ति से वो सारी डायरियां बाबा ने वहां सुहा कराई कराची में, कोई को लाने नहीं दिया। इसलिए 14 साल में क्या पढ़ाया वो तो कोई भी ज्ञान यहां आया नहीं। और इसके बाद धीरे धीरे यहां सेवाएं शुरू हुई 2 साल के बाद, 52 के बाद। तो उसमें भी कार्बन कापियों से बहुत दिन तक काम चलता था, कार्बन कापियां निकलती थी, कोई रिकॉर्ड नहीं था, टेप मशीन तो थी ही नहीं, तो इसलिए उस समय का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहा। बाबा ने ज्ञान को बहुत धीरे धीरे स्पष्ट किया, पूरा ज्ञान एक साथ नहीं सुना दिया, पहला दूसरा तीसरा जैसे क्लासेज में पढ़ाई होती है ऐसे ही धीरे धीरे ज्ञान सुनाते सुनाते। आत्मा ज्योति बिंदु है, परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है, वहां पर टिकाया 63 में। उसके पहले गुष्ठाकार है, ज्योतिर्लिंगम है, ब्रह्म घर और परमात्मा का जो अंतर अभी बताया वो पहले स्पष्ट नहीं किया। जब ज्ञान स्पष्ट हो गया तो बाबा ने बड़ी अच्छी मुरली चलाई और कहा, बच्चे ये जो एबीसी का ये पहली दूसरी क्लास का ज्ञान था उस सबको, उन मुरलियों को आप सब जला दो, देना नहीं किसी को, रखना नहीं है। और अब जो बाबा रिफाइंड ज्ञान दे रहा है इसको अपने पास रखो। तो 62-63 में पूरा ज्ञान रिफाइन हुआ और रिफाइन होने के बाद 69 में बाबा अव्यक्त हो गए 18 जनवरी को। तो सब में बहुत हलचल थी, अब कैसे पढ़ाई होगी। तो बाबा जब 21 जनवरी को यहां आए, गुलजार दादी के तन में प्रवेश हुए, तो बाबा ने आगे कैसे चलेगा वो सब विधि बताई और उसमें कहा कि तुम बच्चों ने जो रिफाइन ज्ञान स्टडी किया 5 साल, उस ज्ञान को पढ़ाई के समय, पेपर के समय पढ़ाई को रिवाइज किया जाता है। तो जो तुमने पढ़ाई की है, 5 साल का स्टॉक है सबके पास, उन मुरलियों को रिवाइज करो। तो 63, 64, 65, 66, 67, 68 पांच या 6 साल का स्टॉक, और वही मुरलियां फिर रिवीजन में आई, रिवाइज हुई। उसके पहले का कोई स्टॉक हमारे पास नहीं है, मधुबन में भी नहीं है, और जिन्होंने छिपा के रखा था वो भी खत्म हो गया, नहीं रखा किसी ने, क्योंकि ज्ञान की रिफाइननेस जब मिल गई तो उसकी बीती हुई बातों को रिवाइज करने की जरूरत नहीं रही। तो ये जो साकार मुरलियां हैं वो 5-6 साल की हैं, वो रिपीट होती हैं, उसके अंदर करेक्शन भी है और एडिशन भी है। करेक्शन ये है कि उस समय अनुसार कई ऐसी बातें थी जो बाबा साकार में समाचार सुनते थे और ब्रह्मा बाबा अपनी बात भी सुनाते थे। साकार मुरली के अंदर ब्रह्मा बाबा के और शिव बाबा के दोनों डायलॉग हैं, दोनों की बातें स्पष्ट होती हैं। ब्रह्मा बाबा के अपने अनुभव हैं और शिव बाबा का सत्य ज्ञान है। सत्य ज्ञान में तो कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं रही, लेकिन अनुभव उस समय के अनुसार थे और उस समय संस्था की शुरुआत में बहुत सारा विरोध था। जहां भी स्थापना होती थी कुछ न कुछ वहां पर हंगामे होते थे और उसके कारण बाबा भी कुछ न कुछ उनके लिए शब्द बोल देते थे, क्योंकि बाबा तो साकार में थे, समाचार बाबा के पास आते थे, तो बाबा कुछ ऐसे शब्द बोल जाते थे जो अभी समय अनुसार वो बोलने की, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय वो जो विरोध करने वाले थे अभी वो भी ज्ञान में आ गए हैं। तो इसलिए उनके लिए जो शब्द कभी बोले हैं थोड़ा बहुत, जैसे मिसाल के तौर पर बताऊं, आप तो बाबा के बच्चे बैठे हैं यहां, हमारी संस्था जब बाहर सेवा पर निकली तो ज्ञान नया है और उस नए ज्ञान के कारण सन्यासियों ने सीधा कहा ये हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है, ये सनातन धर्म का ज्ञान ही नहीं है। और उन्होंने इतना विरोध किया, इतना विरोध किया, जो बाबा को, दादियों को, बहनों को कच्ची गालियां देते थे सामने सामने। इधर हमारा पंडाल लगा है, उधर माइक पर वो भी गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बाबा के पास कोई बात आती थी, बाबा कहता बच्चे उनका दोष नहीं है, वो निर्दोष है, परवश है, उनको पता नहीं है, सत्य ज्ञान को इतनी जल्दी समझ नहीं सकते, वो भी तो देखो अपने को भगवान कहला के अपनी पूजा करते हैं, और भगवान कहलाने वाला हिरण्यकश्यप था, ये भी सब हिरण्यकश्यप है। तो जब ऐसे शब्द बाबा ने उस समय बोले तो उस समय के अनुसार वो ठीक थे। अभी तो हमारी सभा में कई सन्यासी आके बैठते हैं, कई बाबा की मुरली भी सुनते हैं, कई पढ़ते हैं, अगर वही शब्द उसी रीति से हम उसमें लिख देंगे तो वो भाग जाएंगे, सुनेंगे नहीं, विरोध करेंगे कि हमारे लिए ऐसे ऐसे बाबा ने बोला है। तो इसलिए उसमें कुछ बातें करेक्शन की गई हैं, मुरली में कट गई है, हमने किया है, दादियों ने हमसे कराया है। कई बातें ऐसी रही हैं, जैसे एक दिन की बात सुनाता हूं, बाबा कोई मिसाल देते देते किसी के लिए कुछ बोल जाता था, एक शब्द बोला, जैसे ये जो हमारे विवेकानंद जी थे उनकी बहुत महिमा है बंगाल में, बहुत उनको मानते हैं, लेकिन बाबा ने एक दिन मुरली में बोला कि विवेकानंद भी मछली खाता था। बाबा तो ऐसे बोल के साधारण रूप में बोल दिया होगा, बंगाली लोगों को वो बहुत बात खराब लगी, उन्होंने कहा ऐसा बाबा क्यों बोलता है, इतनी विशेषताएं कभी नहीं सुनाई और बोलता मछली खाता। तो वो बिगड़ने लगे, मेरे से आके झगड़ने लगे। नहीं, बाबा ने बोला तुम झगड़ मेरे से रहे हो। कहता है नहीं, हमारे बंगाली लोगों को बहुत ठेस लगती है, इसलिए ऐसे शब्द नहीं हो तो अच्छा है। ठीक है, जब ऐसी बातें जब आती हैं, अभी विदेश आ गया, सब धर्म वाले आ गए, कई बातें बाबा की बहुत कड़े शब्दों में शिक्षाएं थी, अभी वो लोग नए नए नहीं समझ सकते हैं, कहेंगे भगवान ऐसे बोलता है? अरे ये बोलता है तो भैंस बुद्धि है, ये तो गधा बुद्धि है। देखो कितना बाबा श्रृंगार करता है, यहां से गया मिट्टी में, देखा देहमान की मिट्टी में लेट गया, ये तो गधे का बच्चा गधा। अब बाबा तो बोल गया बच्चों को, बच्चे हैं सुन लिया खुश हो गए, भाई बाबा बोल रहा है। लेकिन आजकल की जनरेशन अगर ये सुनेगी भगवान भी हमको गधा कहता है, तो इसलिए उस बात को अभी मुरली के अंदर नहीं डालते, चेट करते हैं, उसको करेक्शन कराई। दादियों ने कहा नहीं, वो शब्द साकार के मुख से सोखता था, अभी नहीं बोलना है। तो ऐसे कुछ बातें मुरली से कट की, लेकिन एडिशन और ज्ञान के अंदर कुछ नहीं हुई, ये वरदान ऐड हुए, स्लोगन ऐड हुए, ऊपर सेंस प्रश्न उत्तर धारणा सार, ये ऐड कराया दादी ने मेरे द्वारा। क्यों ऐड कराया? क्योंकि कई वीआईपी आने लगे, कईयों के पास समय कम होता, कई फोन पर कहते दीदी आज की मुरली का सार सुना दो, आज बाबा का एक कोई अच्छा वरदान सुना दो, क्या सुनाए बहने। तो दादी ने कहा कि आप इस मुरली से ही निकालो और मुरली का एसेंस जरूर लिखो, कोई के पास कम समय है, कोई नोट्स लेना चाहता है तो ऊपर के प्रश्नोत्तर को सार को लिखे, या वरदान मिल जाए तो उस पर मनन करे, चिंतन करे। तो ये सारी एडिशन, बाबा की मुरली तो ओम शांति से शुरू हुई, गीत बजा और नमस्ते तक है, बाकी नीचे ऊपर जो एडिशन है वो दादियों ने मेरे द्वारा कराई, वो मैं करता हूं। बाबा ने भाव के रूप में वरदान नहीं दिया है, ये जो पहली लाइन है वरदान की, पहली लाइन जिसमें भाव शब्द है वो मुझे बनाना पड़ा है, बाकी स्पष्टीकरण बाबा का ही है। बाबा के उसी स्पष्टीकरण को लेकर के मैंने वो वरदान का रूप दिया है उसको, भाव के रूप में। बाबा ने भाव के रूप में नहीं बोला है। क्यों ये वरदान शुरू है, कैसे शुरू है, इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है। जब ये बता रहा था मैं कि 88 में बाबा अचानक एक दिन बोला कि मैं मधुबन निवासी बच्चों से स्पेशल मिलूंगा, तो ओम शांति भवन उस समय तैयार था, ओम शांति भवन में शाम को गुलजार दादी को बिठाया गया और बाबा ने मिलना शुरू किया, कहा सब मधुबन वालों से मिलेंगे, लेकिन भाइयों का टर्न पहले लगा। तो हम मधुबन में उस समय केवल 120 भाई समर्पित थे, उस समय हॉस्पिटल शांतिवन ज्ञान सरोवर कुछ नहीं था। तो बाबा ने 120 भाइयों को रात भर इतना अच्छे वरदान दिए, इतना अच्छा बोला, तो जब सुबह हुआ और दादी को पता चला कि बाबा अभी तक भाइयों से ही मिल रहा है, क्योंकि दादी क्या करती थी, जब बाबा व्यक्तिगत मिलने आ जाते थे तो दादियों को बाबा कहता था तुम लोग रेस्ट करो, तुमको दिन में सेवा करनी है, जाओ सो जाओ, जब बाबा विदाई ले तब आ जाना। तो दादी तो चली आई, बाबा मिलना शुरू किया और सवेरे जब दादी वहां गई तो देखा अभी तक भाई ही मिल रहे हैं, बहने रह गई। सुबह 7 बज गया, सारी रात, पूरी रात, शाम को 7 बजे से 6:30 से सुबह 7 बजे तक 12 घंटा करीब 120 भाई मिले। तो दादी कहती इतना क्या बाबा ने बोला, क्या इतना वरदान दिया, मुझे बुलाया, क्योंकि मैं तो रात भर लिखा था हाथ से। तो बोली तुम टाइप करके ले आओ। जब मैं टाइप किया तो एक बहुत बड़ी किताब जितना, सारे दिन टाइप किया और टाइप करके मैं जब दादी के पास ले गया तो दादी कहती क्या करोगे इसका। तो मैंने कहा कि दादी जिनको बाबा ने बोला है उनको टाइप करके दे देता हूं, और वो फोटो भी निकला है तो फोटो के साथ अपने अपने ऑफिस में, अपने जहां कारोबार करते हैं वहां लगा देंगे, उनको खुशी होगी बाबा ने मुझे ये कहा। बस एक को बाबा ने बोला, मेरा विचार है, दादी कहती मेरा विचार है इसको मुरली के नीचे सेट करो, और सारे ब्राह्मणों के लिए बात है ये, एक मधुबन के लिए नहीं है, इसको कुछ अच्छा रूप दो, कुछ वरदान का रूप दो, क्योंकि मेरे मुख से निकला था बाबा ने बहुत वरदान दिए, तो वरदान का रूप दे करके इसको लिखो। तो मैंने वो 120 वरदान जब सेट किए तो 365 तक दिन तक मैंने वो वरदान चलाए, कोई वरदान रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि उसको ही हम काट काट के 4 लाइन में 5 लाइन में सेट किया, और उसका पहला लाइन बनाया कि कोई भी भाव के लिए कोई विधि होगी, कोई आधार होगा। एक ही लाइन के अंदर तीनों शब्द आने चाहिए। अगर सफलता मिल रही है तो उसने कुछ सफल किया है, कुछ सफल किया है, कुछ उसके लिए पुरुषार्थ किया है, तब उसको सफलता मिली है। तो उसकी आधार, विधि और सफलता, ये तीनों चीजों को लेकर के पहली लाइन को सेट किया और उसका स्पष्टीकरण बाबा के ही शब्द लिए, बाबा के शब्दों में कोई चेंज नहीं किया। इसलिए एक साल जब पूरा हुआ तो ब्राह्मणों को तो इतना अच्छे लगे वो वरदान की दादी, ये वरदान तो सदा मुरली में आने चाहिए। तो दादी मेरे को कहती है, अभी कैसे लिखेगा, सदा बोला है लाना चाहिए, आना चाहिए। तो हमने कहा, दादी वरदान तो पूरे हो गए, अब क्या करना है। बोली, अरे वरदान पूरे थोड़ी हो गए, बाबा ने इतना 69 से पढ़ाया है, तुम सब मुरलियां रिवाइज करो। तो जब मैंने 69 से बनाना शुरू किया तो 6 साल तक मैंने एक भी वरदान रिपीट नहीं किया। 69 से लेकर के 90 तक की मुरलियों के सब वरदान निकाले, जितने वरदान बन सके। तो 6 साल में एक भी वरदान रिपीट नहीं हुआ। अभी उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिपीटेशन शुरू हुई, अभी भी कोई नया मिल जाता है तो उसमें एडिशन हो जाता है। तो वरदान ऐसे ही साकार अव्यक्त बाबा की मुरलियों से बनाए हैं, स्लोगन भी अव्यक्त बाबा की मुरलियों से हैं, बाकी धारणा सार है, प्रश्न उत्तर है, वो सब उसी दिन की मुरली के हैं। ठीक है, समझ गए। ओम शांति। तो बताया है वो, तो मैं एक बात बताया, मिसाल बताया। अच्छा, ऐसा है कि सूक्ष्म वतन में मूवी है, टॉकी नहीं है। सूक्ष्म वतन में अनुभव के आधार से कोई रियलाइज कर सकता है। जिस प्रकार की संदेशी है, जिस प्रकार का उसका चिंतन है, जिस प्रकार का उसका अपना विचार है, उसी प्रकार से वो कैच कर सकता है ऊपर की दृश्य को। सबको बाबा एक जैसा ही बोलेगा, लेकिन उसकी आवाज तो कोई वाणी की नहीं है, दृष्टि से, वाइब्रेशन से, उनके थोड़े हाव भाव से जो संदेशी कैच करेगी वही सुनाएगी आपको। इसलिए हर एक संदेशी की कैचिंग पावर अपनी अपनी है और जितना वो कैच कर पाती है उतना ही वो स्पष्ट करती है। तो जब स्पष्ट करेगी तो यहां की संदेशी, शांतिवन की संदेशी, किसी सेंटर की संदेशी, तीनों संदेशों में अंतर आ सकता है, जो उसकी कैचिंग पावर है। अब गुलजार दादी जब संदेश लाती थी तो जैसे मुरली की तरह बाबा क्या संदेश सुना देती थी, कुछ न कुछ में शिक्षाएं, कोई दृश्य, कोई उसके दृश्य के पीछे राज, उनका सुनाने का उनका अपना चिंतन, वो बाबा की प्रवेशता, उनकी कैचिंग पावर, उनकी नंबर वन। वो संदेश हमने प्रिंट किए हैं सब किताबों में, अव्यक्त मुरलियों के सब किताबों में है। दूसरे संदेशियों के हमने संदेश प्रिंट नहीं इसलिए नहीं किए क्योंकि हर एक की कैचिंग अपनी अपनी है। सब सही क्योंकि वो सब बाबा की बातें सुनाएंगी, लेकिन सब आप मिलाना चाहो तो मिलेंगी नहीं, क्योंकि वो जैसा कैच कर पाई वैसा बता रहे। ओम शांति।
सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना। पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को।